ओम शांति। आज है 28/4/84 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे, बाप इस जन्म के लिए तुम्हारी ऐसी दिल बहलाए देते हैं जो तुम्हें कहीं भी दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं होगी। ये मीठे बच्चे किसने कहा? बाप ने कहा। ये बाप कौन है? अपने अपने जिस्मानी बाप तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो मुरली में मीठे मीठे बच्चे कहने वाला बाप है, वो इस दुनिया का बाप नहीं है। इस दुनिया में होते हैं जिस्मानी बाप और वो है रूहानी बाप। रूहों की दुनिया से आने वाला बाप, ये रूहानी दुनिया कहाँ होती है? जिस्मानी दुनिया तो यहाँ है, रूहानी दुनिया कहाँ है? अंग्रेजों में उस रूहानी दुनिया को कहते हैं सुप्रीम एबोव, सोल वर्ल्ड। मुसलमानों में उसको कहते हैं सातवां आसमान, अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। और हिंदुओं में उसको कहते हैं परम धाम, जहाँ से वो रूहानी बाप आता है, ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक से जहाँ आत्माएं आत्माएं बिंदु बिंदु रूप में स्टार रूप में रहती है, वहाँ उनके जिस्म नहीं होते, शरीर नहीं होते। गीता में उस लोक का वर्णन किया गया है, न तद्भासय ते सूर्यो न शशांको न पावक यद्यत्ता निवर्तन्ते तथा मम परमं मम। उस ब्रह्मलोक में जो रूहानी बाप का घर है, हम आत्माओं का घर है, वहाँ न सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुँचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुँचता है। सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे जो परम धन्य है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। गीता में ऐसा श्लोक आया है, भगवान स्वयं कहता है कि मैं इस पाप की दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ, मैं ऊँचे से ऊँचे धाम का रहने वाला हूँ। जाते भी है ऊँचा तेरा नाम, ऊँचा तेरा काम, ऊँचा तेरा धाम, फिर भूल जाते हैं, भटकते रहते हैं तीर्थों पर, मंदिरों पर, ठिकानों पर, मस्जिदों पर, गिरजाघरों में, और कह देते हैं जो तो तरफ जाती है, हर जगह व्यापक है। अरे उस पाप की दुनिया में पाप ही व्यापक है, पाप व्यापक है, विकार व्यापक है, सुख दर्द व्यापक है। वो सुखदाता बाप कैसे व्यापक हो गया? تو وہ روحانی بات ہے. وہ میٹھے سے میٹھے پیٹ ہوم بادل کا گھر جسے کہا جاتا ہے, جہاں کا رہنے والا ہے اور اس شکتی پر تب آتا ہے جب سب بڑے بڑے مہاتما دھرم پتا اپنا اپنا کرشمہ دکھائی دیتے ہیں, چاہے وہ ابراہیم ہو, بدھ ہو, کرائسٹ ہو, گرو نانک ہو, وویکانند ہو, مہاتما گاندھی ہو, سب آ کر کے شکتی پر اپنا کرشمہ دکھاتے ہیں سکھ شانتی کی ساتھنا کے لیے, اور دنیا نیچے ہی شکتی چلی جاتی ہے. جب دنیا کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ استھان استھان پر آئے ہوئے وہ مہاتما منشی گرو سب فیل ہو جاتے ہیں, تب کلیگ کے انت میں وہ ہر ہر بم بم کا نعرہ لگانے والا اس کا نعرہ بازی مکتی نہیں پریکٹیکل کرم کرنے والا, پریکٹیکل میں بم جو ایٹمک شکتی ہے پاپیوں کا دراچاریوں کا بنا چائے سے دشکام دشکرم کرنے والوں کا ناش کرنے والا وہ اس شکتی پر آ جاتا ہے کلیگ کے انت میں. وہ سپریم سول باپ جو بندو بندو آتماؤں کا باپ ہے وہ آتماؤں میں سے جو وشیش آتمائیں ہیں پانچ دھاری آتمائیں, کیونکہ سپریم سول تو اترتا ہے اب ہوتا ہے وہ واسطے میں کوئی پاس ایسا بجاتا نہیں ہے, لیکن جن میں پرویش کرتا ہے ان کے دوارا کہا جاتا ہے کہ بھگوان نے پارٹ بجایا. پارٹ تو ضرور شیش ہی بجاتا ہوگا, گیتا میں لکھا ہوا ہے پرویش تم میں پرویش کرنے یوگی ہوں, تو وہ پرم دھام سے آ کر اس شکتی پر کلیگ کے انت میں اس شکتی رنگ میں کسی کوئی وشیش ہیرو ہیروئن پارٹ دھاری آتمائیں ہیں جن میں پرویش کرتا ہے, وہ آتمائیں کون ہوگی؟ ضرور وہ شکتی کے آدھی پرش ہوں گے. ہر دھرم میں ان کی مانتا ہونی چاہیے, وہ شکتی کے آدھی ماتا اور پتا ہونا چاہیے. ان کو ہندوؤں میں کہا جاتا ہے آدھی دیو آدھی دیوی, شکتیوں میں گائن کرتے ہیں سما آدھی دیو ہے پورش ہے پرانے ہے, وہ آدھ دیو شنکر کو کہا جاتا ہے. شنکر دیو دیو مہادیو کہا جاتا ہے, جو بھی 33 کروڑ دیوتائیں ہیں ان میں سب سے اونچے دیوتائیں ہیں برہما وشنو اور شنکر, لیکن برہما اور وشنو سے بھی اونچا پد ہے مہادیو کا جنہیں دیوادی دیو کے نام سے کہا جاتا ہے. وہی وہ پارٹ دھاری ہے اس تت روپی رنگ منچ کا. شاستروں نے ان کے انیک نام دیے ہوئے, اپنے بھارتی پرمپرا میں رام اور کرشن کا وشیش گائن ہے, राम वाली आत्मा सत्य स्वभाव संसार की मानी जाती रही। शास्त्रों में भी ये बात है। अब प्रकृति तो मधुर पाठ बजाने वाली मानी जाती रही। इसलिए कृष्ण ने जो भाषा उच्चारी है उस भाषा का नाम मुरली दे दिया है। और वो जो जो जगत पिता है, सारे जगत का पिता जगदीश कहा जाता है, वही राम की सोल है जो सारी सृष्टि में पिता का पार्ट बजाने वाली है। ये सृष्टि के आदि पिता और माता संयुग के अंत और सतयुग के आदि में सृष्टि पर आकर अपना पार्ट प्ले करते हैं। वो स्वयं वास्तव में तो पार्ट शेष से नहीं बजाते, उनके अंदर सुप्रीम सोल आता है जिसे भारत की परंपरा में शिव कहा जाता है। शिव शंकर से भिन्न आत्मा है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि शिव शंकर एक है। उसका कारण ये है कि शिव के जो भी मनुष्य मात्र बच्चे आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो शेष पाठधारी शंकर की सोल या राम की सोल है, वो बाप समान स्वरूप को निराकारी निर्विकारी निर्हंकारी इस शेष को धारण करती है। इसलिए शिव और शंकर को मिला दिया जाता है। कहीं भी शास्त्रों में शिव और ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया। शिव ब्रह्मा कहीं सुना? शिव और विष्णु को मिलाकर एक नहीं किया गया। शिव विष्णु कहीं नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ। सिर्फ भोलेनाथ नहीं कहा जाता, शिव शंकर भोले भाले कहा जाता है। तो शिव पहले और शंकर बाद में, ये कंपनी हो गई। जैसे कोई कंपनी का नाम देते हैं तो बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। तो शिव है सुप्रीम सोल, बिंदु बिंदु चार चार आत्मा का बाप, जो चार हर मनुष्य आत्मा के मस्तक पर जिसे उत्तम अंग कहते हैं, उस उत्तम अंग में वो आत्मा निवास करती है, जिसकी यादगार में हम बिंदु या टीका लगाते हैं। वास्तव में प्राचीन मनुष्यों ने ये बिंदु या टीका लगाने की प्रथा इसलिए चलाई थी कि हम एक दूसरे को देखें तो बिंदु रूप में आत्मिक रूप में देखें। लेकिन बाद में ये परंपरा मात्र रह गई, हम ये भूल गए कि हम एक ज्योति बिंदु स्टार आत्मा है, हम एक सितारा है और एक दूसरे को दैव रूप में देखने लगे। बिंदु और टीका लगाने की परंपरा मात्र रह गई। अभी बाप आकर बताते हैं, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है, जिसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग दिखाते हैं, वो सिर्फ आत्मा है, उसका अपना जिस्म नहीं होता, अपना शरीर नहीं होता। इसलिए उसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग दिखाते हैं, جس کو نہ ہاتھ ہے نہ کان ہے نہ پاؤں ہے نہ آنکھ ہے نہ ناک ہے. ہاں تو شیولنگ میں ایسے بھی کھدائیوں میں ملے ہیں مندروں میں آدمی بھی پراچین مندروں میں وہ شیولنگ استھاپن ہے جن میں صرف مکھ بنا ہوا ہوتا ہے من آنکھ بھی دکھائی جاتی ہے ناک بھی دکھائی جاتی ہے کان بھی دکھائے جاتے ہیں مکھ بھی دکھایا جاتا ہے. پانچ کلو والا مکھ چار کلو والا مکھ تین مکھوں والا شیولنگ ایسے دکھاتے ہیں. یہ ٹائم ٹو ٹائم جو سنسکرتی رنگ میں کسی وشیش آتمائیں ہیں انہیں میں وہ پرویش کرتا ہے نمبر وار پرچار سنسار اور ان آتموں کے دوارا شیش سے کرم کرنا دکھاتا ہے شیش سے پارت بجانا دکھاتا ہے. تو جن میں پرویش کرتا ہے ان وشیش آتماؤں کا نام برہما دیا جاتا ہے. اس لیے برہما کو چتوانند کہتے ہیں چار مکھوں والا پنچانند کہتے ہیں پانچ مکھوں والا. تو کلیوگ کے انت میں وہ روحانی باپ جب اس شکتی پر آتا ہے تو وشیش آتماؤں میں پرویش کر کے مجھ کے دوارا وانی چلاتا ہے. پہلے وہ ماں کے روپ میں سنسار میں آتا ہے جس کا نام دیا جاتا ہے برہما بڑی ماں برہما نے بڑی ماں مانے ماں مانے سکری کی رنگ من کسی بڑے سے بڑی ماں جس سے جاتی پیار سے دے نہیں سکتا اسے برہما کی مکھ سے جو وانی اچارن کی جاتی ہے اس وید وانی کا نام شاستر نے دے دیا ہے میرے لیے میری میٹھی تان سنانے والی میٹھی سے میٹھی تان کا راجیہ کا کون سا ہوتا ہے میرے لیے انیک دھرموں کی شیش سے شیش پاور فل آتماؤں کو اکٹھا کرنے پر ایک رنگ منچ کو اکٹھا کرتا ہے. اس رنگ منچ کا نام ہے ماؤنٹ آبو. ماؤنٹ آبو سے برہما کی وانی چلتی ہے. وانی برہما کی چلتی ہے یا برہما میں شیو کی چلتی ہے؟ کس کی وانی چلتی ہے؟ برہما کے اندر شیو کی سپریم سول جو آتماؤں کا باپ ہے وہ آ کر کے بولتا ہے پرنتو سنکشتا ہے کرشن والی سول کا جو برہما کے نام اس کے سنسار میں پرکٹ ہوتا ہے جس کے نام سے سنسار میں ہر دیش کے اندر سب بڑے بڑے شہروں کے اندر برہما کماری شری وشو ودیالیہ کھولے گئے ہیں. لیکن لوکک میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوکک پریوار میں جن بچوں کو بہت پیار ملتا ہے لو لو ملتا ہے تو وہ بیلنس نہ ہونے کے کارن لاؤ لو کا وہ بچے بگڑ جاتے. شاستروں میں بھی دکھایا ہوا ہے دھرتراشٹر اور گاندھاری نے اتی کا اس لیے دیا اپنے بچوں کو تو بچوں کا کیا حال ہو گیا؟ جو بھی سو کورو تھے وہ سارے کے سارے بگڑے ہو گئے. तो ऐसे ही परमात्मा बाप जो अति का स्नेह देता है माँ के रूप में, एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसा नहीं होगा किसी भी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जाकर के पूछ ले एक एक से, जो उस समय के जीवित हुए बचे हो उनसे पूछा जाए तो सब यही कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना और दुनिया में कोई ये नहीं दिया। तो 10-20-50 सेकंड के लिए ही बाबा को क्यों न मिला हो, पत्थर लाल ही क्यों न मिला हो, वो भी यही कहेगा कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतने हमारे माँ बाप ने भी नहीं दिया। तो परमात्मा बाप जिनको तो कहते ही है स्वमेव माता च पिता स्वमेव, क्या कहते तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, तो जरूर इसने इस सच रूपी रंगमंच पर माता के रूप में स्नेह देने वाली, ज्ञान का दूध देने वाली जो भी माताएं हुई हैं उन माताओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाया होगा इसके द्वारा ब्रह्मा जी का। वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अभी भी प्रैक्टिकल में संसार में खुले हुए हैं, परंतु ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 69 में। क्यों छोड़ दिया? कि सुप्रीम चोल बाप ने देखा कि 35 वर्ष हो चुके, चित्र से ये कार्य शुरू हुआ सिंह हैदराबाद से कलकत्ते से, और अभी तक बच्चों में परिवर्तन नहीं आया इतना प्यार लेने के बावजूद भी। तो परमात्मा बाप ने अपना वो चोला जिसे ब्रह्मा कहा जाता है वो बदल दिया, ब्रह्मा के चोले को छोड़ करके जो तो ब्रह्मा के लिए शास्त्रों ने गायन है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, वो स्थापना का कार्य ब्रह्मा के ब्राह्मण को पैदा हुए, लेकिन जो संपन्नता होनी चाहिए थी वो संपन्नता नहीं हुई। क्या संपन्नता? शक्ति बनाने की, देवताओं की, लेकिन ब्रह्मा के दो प्रकार के ब्राह्मण पैदा हो गए, रावण के प्रकार के राज्य के ब्राह्मणों की तादाद बढ़ती चली गई, और गुरुवशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे जो पुरुषार्थी ब्राह्मण उनकी तादाद घटती चली गई। जब ऐसी स्थिति सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं तो ब्रह्मा का चोला टूट जाता है, परमात्मा बाप की तीन चोल राम वाली चोल न प्रवेश करके उसको संकल्प के नाम रूप के संसार में विख्यात करना शुरू करते राम के बाणों को क्या कहा गया है? जो ज्ञान के बाण छोड़े थे या जहरीले लोहे के बाण छोड़े थे? अरे दुनिया के बड़े बड़े महात्माएं भी हिंसा करना नहीं सिखाते हैं। तो परमात्मा बाप जो महात्माओं से भी बड़ा महात्मा है, महात्माओं का भी बाप है, धर्म पिता का भी बाप है, बापों का भी बाप है, देवियों का भी देवी है, जो हिंसा करना कैसे सिखाएगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट नीति काम ब्रह्मा के द्वारा मुर्गी चलाए सकता है हिंदुस्तानी, जो सुप्रीम कोर्ट आपकाई ब्रह्मा को ध्वस्त करने के लिए उनको नीचा दिखाने के लिए ज्ञान के बाण भी छोड़ता है, मनुष्य किसको बनाता है? राम की चोर को, किस नाम रूप को? शंकर के नाम रूप को। इसलिए शंकर के मंदिरों में कौन सा वाद्य यंत्र विशेष बनाया जाता है? बोलनी बजाई जाती है क्या? बोलनी तो वो नाम मात्र की है, लेकिन उसका जब अर्थ निकलता है, जो व्याख्या निकलती है शंकर के नाम रूप से, वो व्याख्या मनाने का काम करती है। जैसे बांध फटते हैं, ऐसे बांध फटने का काम करती है। इसलिए शंकर के नाम रूप के साथ बम बम शब्द का उच्चारण होता है। जब परमात्मा बात आते हैं तो तीन देवताएं साथ ही आते हैं। तीनों देवताओं का उदय होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति संसार के सामने पहले से पकड़े थी, ताकि कोई दुनिया में ये न कहे कि भगवान बाप ने आकर के आते ही मारना शुरू कर दिया। इसलिए प्यार से ही पाठ लगाता है। जब प्यार से पाठ नहीं चलता है तो शंकर के नाम रूप से जो बात मिलती है वो भी ज्ञान की मिलती है। कोई फूल एटम बमों की मार नहीं मिलती है। हालांकि जब भगवान बाप आता है तो एटम की एनर्जी की भी शुरुआत होती है। आज से 62 साल पूर्व एटमिक एनर्जी का नाम भी जान नहीं था, क्योंकि हर हर बम बम का उद्घोष करने वाला इस शक्ति पर आया ही नहीं। जब वो इस शक्ति पर आ जाता है तो स्थूल रूप में एटमिक एनर्जी का भी निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन उसे स्थूल रूप में बनाई हुई एटमिक एनर्जी का कनेक्शन जो परमात्मा पाप शक्ति आकर के ब्राह्मणों की रचता है, उससे सीधा कोई कनेक्शन नहीं। वो तो आकर के ज्ञान के बम्ब, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, अधर्म में मान्यता हो गई तो वो जगह जगह में व्याप्त है, कण कण में व्यापक है। परमात्मा बाप आकर बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ये तो बम्ब छोड़ा। दूसरा बम्ब क्या छोड़ा? सारी दुनिया में गीता की ढेर प्रतियां, ढेर व्याख्याएं और ढेर अनुवाद हर भाषा में हुए पड़े थे। आकर के क्लियर करते हैं, मैं सिर्फ कृष्ण के व्यक्तित्व में कलयुग के अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। साधारण शोले में कृष्ण की शोल 84 के चक्र में आने के बाद जो साधारण मनुष्य तन का पाठ बजाती है, उस तन में मैं प्रवेश करके पाठ बजाता हूँ। पाठ मैं बजाता हूँ, लेकिन तन चक्र वाली सोलता है। इसलिए लोग इन स्थूल आंखों से स्थूल देहधारी को देखते हैं, तो लगाव उसमें लगा हुआ होने के कारण उसे ही भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में मनुष्य तो भगवान होता ही नहीं। भगवान को तो निराकार, निरहंकारी, निर्विकारी, परम ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। श्लोकों में भी हम गाते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। फिर क्या कहते हैं? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तत्मय श्री गुरु ए नमः। माना परम ब्रह्म सबसे ऊंचा गुरु कौन हुआ? सतगुरु कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ, विष्णु हुआ या शंकर हुआ? नहीं, कौन हुआ? जो उनसे भी ऊंचा निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिसे शिव नाम दिया जाता है, उसकी बिंदु क्या ही नाम शिव है। वो बिंदु, ज्योति बिंदु, जिसे सिंधु कहो, सूर्य का हो, अनंत प्रकाश देने वाला तो हो, वो उन तीनों देवताओं के भी सर्वोपरि, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अगर वो भी गर्भ से जन्म मरण के चक्र में आने लगे, गर्भ से जन्म लेने लगे, गर्भ के बंधन में बंधने लगे, तो हम मनुष्य आत्माओं को इस शक्ति पर छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। मन की गुरु इस शक्ति का सुधार नहीं कर सके, उसी गुरु शक्ति में विलीन होते रहे और दुनिया भी नीचे देखी चली गई। वो सुप्रीम बात ही जब इस शक्ति पर आता है तो ब्रह्मा जी शंकर के द्वारा इस शक्ति का स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराता है। तो ब्रह्मा के द्वारा पहले पृथक होता है प्यार की मूर्ति के रूप में, कृष्ण की मुरली के रूप में, तो लोग समझते हैं कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, लेकिन कृष्ण गीता का भगवान यहाँ साबित नहीं होता। वास्तव में गीता का भगवान कौन साबित हुआ? निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर या साकार श्री कृष्ण? कौन कार्य करता है? निराकार ज्योति बिंदु शिव, जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जाती हाथ पांव वाली, एक बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग दिखाया जाता है मंदिरों में, जैसे आत्मा की यादगार है शालिग्राम। शालिग्राम में बंधन दिखाते हैं, क्योंकि आत्माओं को बंधन लगता है, रामकृष्ण की आत्माओं को भी बंधन लगता है। रामकृष्ण की आत्माएं कोई भगवान नहीं होती, जिसे दास सागर कहें, वो सदगुरु नहीं है। तो गीता का भगवान कृष्ण भी नहीं है। कौन है गीता का भगवान? निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव है, सुप्रीम सोल है। ये दूसरे आयतन धमाका हुआ, दुनिया में लोग कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, भगवान बात आकर के बताते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये बड़े से बड़े भूल है। गीता माता है और गीता माता का बच्चा श्री कृष्ण है। गीता पति भगवान निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव है। हाँ, वो शंकर के द्वारा शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो वो जगत पिता है, वो जगत की माता है गीता माता। कहते भी है श्रीमद भगवत गीता माता। माता कोई पुस्तक तो नहीं कहा जाता है, किताब का नाम माता नहीं है। जरूर कोई चैतन्य शक्ति है जिसने गीता माता का पाठ बजाया है, उस गीता माता से सतयुग के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव नाम का नारायण रूप से कोई बच्चा जन्म लेता है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सतयुग में नारायण का राज्य था, नारायण सोलह कला संपूर्ण था, सतयुग में भी सोलह कलाएं संपूर्ण होती है। ऐसे राज्य की स्थापना, ऐसे सोलह कला संपूर्ण कृष्ण अथवा नारायण की को जन्म देने का कार्य वो परमपिता परमात्मा शिव जिस तन में प्रवेश करके मुकर्र रूप में भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो भगवान शंकर टाइटल दिया जा सकता है भगवान का, क्योंकि भगवान के साथ भगवान ने भगवती भी लगाई हुई है। वास्तव में भगवान तो अकेला है, जब भगवती शब्द लगाया जाता है तो कोई टाइटल धारी ज्ञात होता है। लक्ष्मी नारायण उनका नाम तो, शंकर पार्वती उनका नाम तो, जगदम्बा जगत पिता उनका नाम तो, वैष्णो देवी उनका नाम तो, वो है गीता माता और वो है गीता पति भगवान, गीता का पति। और उन दोनों के शक्ति रूपी रंगमंच पर जो पहला शक्ति रूपी व्यक्ति का पत्ता पैदा होता है वह श्री कृष्ण।
तो श्री कृष्ण बच्चा और गीता को उसका पति बना दिया। श्री कृष्ण बच्चा है और गीता माता को उसका पति बना दिया तो कितना जुलूम कर दिया, महापाप कर दिया असली बात को न जानने के कारण, इसलिए सबसे नीचे गिर गई। भगवान बाप को भी जब इस तरह की बातें कही जाती है, गालियां दी जाती हैं कि सड़क जाती है, पट्टी में है, पेशाब में है, कीड़े में है, मकोड़ों में है, तो पट्टी नीचे नहीं गिरेगी तो क्या होगा। भगवान के लिए तो लोग इतनी श्रद्धा करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ इन गुरुओं ने उल्टा ज्ञान सिखा करके क्या कर दिया, सारी शक्ति की मेंटेलिटी को नीचे गिरा दिया। तो परमात्मा बाप अब आकर के कहते हैं नीचे बच्चे, बाप बाप इसकी जन्म के लिए तुम्हारी ऐसी दिल बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए कोई मेले बना खड़े में तीर्थों में इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा, जाने की दरकार नहीं पड़ेगी। कैसे दिल बहलाते हैं, ज्ञान से दिल को मजबूत कर देते हैं, ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिस ज्ञान को सुनने वाले, पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले, मन चिंतन मंथन करने वाले विश्व के बादशाह बन जाते। जो असली गीता ज्ञान है वो परमात्मा बाप सन्मुख ला करके मुख से सुनाता है। जो गीता तो कागज की लिखी हुई है, मनुष्यों के द्वारा बाद में लिखी गई है, जो भी धर्म किताएं आते हैं वो कोई बाइबल या कुरान लिखते नहीं है, न लिखी हुई पढ़ करके सुनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट आकर के वो धर्म किताएं डायरेक्ट आकर के मुख से बोलते हैं, कोई भी गीता आदि का पाठ नहीं करते, गीता पढ़ करके नहीं सुनाते। ये तो भगवान बात है जब इस शक्ति पर आता है तो वो ये बात बताता है, बच्चे ये कुरान, ये बाइबल, ये शास्त्र, ये तो धर्म पिताओं से बहुत वर्षों के बाद लिखे जाते हैं, उनके सालों से इनको लिखते हैं, इसलिए जो शक्ति गीता है वो गीता तुम्हें डायरेक्ट मुख से आकर के सुनाता हूँ। हजारों वर्षों के बाद फिर वो गीता कागजों में लिखी गई, पहले भोज पत्र में लिखी गई थी, बाद में कागज में लिखी गई। उससे पहले गुरु लोग सुनाते थे और उनके शिष्य उनको सुन करके याद कर लेते थे, लिखा पढ़ी का कोई काम नहीं होता था। अभी वो गीता का ज्ञान लोप हो चुका, कागज की गीता मात्र रह गई, मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई उसकी एक तो आपसे भी ज्यादा टीकाएं हो गई, एक टीका गीता की एक व्याख्या दूसरी व्याख्या से मिलती नहीं, गीता की एक शंकराचार्य की व्याख्या कहती है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है, सब असत्य है। और माध्वाचार्य की गीता कहती है परमात्मा अलग है, आत्माएं अलग अलग है, परमात्मा सुप्रीम सोल अलग है और जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो अलग अलग है, एक आत्मा का संस्कार नहीं मिल सकता दूसरे से। और सत्ती जन्म मंच पर आत्माएं आकर के पार्ट बजाती है, कैसा पार्ट बजाती है, ऊपर से आती है और नीचे नीचे गिरती चली जाती है, उनको उठाने वाला कोई भी मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। एक परमात्मा बाप सुप्रीम को ही जब इस शक्ति पर आते हैं तो फिर से गीता ज्ञान सुना करके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और सब आतताई धर्मों का विनाश करा देते हैं। ऐसे नहीं कि और धर्म सब झूठे ही झूठे हैं। और धर्मों में भी तेज से शक्तिशाली आत्माएं हैं, लेकिन हर धर्म में बाद में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है। दुनिया की हर चीज पहले तत्व प्रधान होती है और बाद में तत्व प्रधान से तत्व सामान्य रजो तमो हो जाती है। तो परमात्मा बाप जिस धर्म की स्थापना आसन से करते हैं, वो धर्म सत्युग में तत्व प्रधान स्टेज में रहता है। सोला कला संपूर्ण मन की आत्माएं उस धर्म को फॉलो करती है। त्रेता में 14 कला संपूर्ण रह जाता है। 14 कला संपूर्ण आत्माएं उस सनातन धर्म को फॉलो करती है अपने जीवन में प्रैक्टिकल। जब द्वापर शुरू होता है तो उस द्वापर में आज से 2500 वर्ष पहले गीता के ज्ञान में द्वैत फैलाने वाला दूसरा धर्म प्रयुक्त करता है इब्राहिम। इब्राहिम के बाद महात्मा बुद्ध आते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। क्राइस्ट आते हैं, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। मोहम्मद आते हैं, मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं। शंकराचार्य आते हैं, संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं। गुरु नानक आते हैं, सिख धर्म की स्थापना करते हैं। तो टाइम टू टाइम अनेक धर्म पिताएं जो मनुष्य गुरु हैं, वो आकर के सनातन धर्म में भेद पैदा कर देते हैं। भारतवासी नीचे व्यक्ति चले जाते, दुर्चारी पूजा में मस्त हो जाते हैं। एक बात को भूल करके 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने लग पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कण कण की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। हनुमान की पूजा करेंगे, जानते नहीं है कि हनुमान का अर्थ क्या है, हनुमान का जो चित्रकार ने रूप बनाया है उसका अर्थ क्या है, गणेश का अर्थ क्या है, जो रूप बनाया है उसका अर्थ क्या है। बस सीधा साधा समझ लेते हैं, हाँ ऐसा ही रूप वाला कोई व्यक्ति हुआ होगा, दस सिर का कोई रावण हुआ होगा। अरे अगर ऐसा कोई हुआ होता तो उसके उनमें भी तो वो पैदाइश होनी चाहिए। ये सब चित्रकार की चित्त है। चित्रकार और कवि जब अपनी कविता करता है, चित्र गढ़ता है, तो उसमें भाव भंगिमाएं बढ़ता है। उन भाव भंगिमाओं का सही अर्थ नहीं लगाया गया, उल्टा अर्थ लगा करके उनको व्याख्या संसार के सामने भेजी गई। कहते भी हैं, तय समझे कवि या समझे रवि। जिन कवियों ने कविता की है, जिन मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई, चित्रकारों ने चित्र बनाए, वो तो चले गए। अब उनकी व्याख्या कौन करे? जो व्याख्या करने वाले हैं वो सब भिखारी है, भिखारी मनुष्य। भिखारी मनुष्य जो भी व्याख्या करेगा, वो भिखारी बुद्धि से व्याख्या करेगा या निर्विकारी बुद्धि से करेगा? भिखारी बुद्धि से भिखारी व्याख्या हो गई। तो अंत में स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव को शक्ति पर प्रत्यक्ष होना पड़ता है, जिसे कहते हैं रवि। या तो समझे कवि, जिसने वो कविताएं की है, जिन्होंने वो शास्त्र लिखे हैं, अथवा समझे रवि। रवि माना सूर्य। जो ज्ञान सूर्य जब इस शक्ति पर आता है तो सूर्य के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसका सामने आकर मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि और जितने भी ज्ञान सुनाने वाले हैं, आध्यात्म विद्या को बताने वाले हैं, वो सब पढ़ करके तैयार होते हैं, पढ़ करके तब दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। सुप्रीम कोई बाप कोई साधनों की पढ़ाई नहीं करता, उसके अंदर तो ज्ञान ऑलरेडी समाया हुआ है, समाया रहता है। वो जब इस शक्ति का रंगमंच पर आता है तो वो निराधार होकर के वाणी चलाता है, वो झूठ खुशी बताता है वो डायरेक्ट बताता है। उसे बताने वाले को ना देख करके जितने वो प्रवेश करता है उसकी एक्टिविटी को देखने लग पड़ते हैं। राम और कृष्ण में, इब्राहिम में, बुद्ध में, क्राइस्ट में, गुरु नानक में फंस जाते हैं। ये सब मूर्तियां हैं जो पहले सात्विक थी और बाद में सत्य रूपी रंगमंच पर ताट बजाते बजाते जन्म लेते लेते नीचे गिर जाती, पतन हो जाता है। जब सारी शक्ति पतन के दर्श में समाई जाती है तब की मन का भ्रष्ट हो जाती है, मन बुद्धि गुटारों में लगी रहती है। तब कलयुग के अंत में परमात्मा शिव आकर के ज्ञान के ढेरों रहस्य खोलते हैं। जैसे दुनिया समझती है कि हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है, भगवान बाप आकर के बताते हैं आत्मा की सदाकाल की मुक्ति नहीं हो सकती। एक तरफ तो कहते हैं भगवान कल्प कल्प में भगवान आकर के जन्म लेता है, तो भगवान तो इस सृष्टि में हमेशा के लिए बांध दिया, आत्माओं के लिए हमेशा के लिए मुक्ति कैसे हो सकती है? जब भगवान बाप ही सृष्टि पर बना हुआ है सृष्टि का उद्धार करने के लिए, तो आत्मा सदाकाल के लिए कैसे मुक्त हो सकती है? मुक्ति का अर्थ नहीं जानते। मुक्ति का मतलब यह है छुटकारा। काय से छुटकारा? कोई अच्छी चीज से छुटकारा पाना चाहता है, अच्छे व्यक्तियों से मुक्ति चाहता है? नहीं, सब कोई चाहता है दुख से छुटकारा हो, दुख से हमारी मुक्ति हो जाए। बुखार आया हुआ है, बुखार से हम मुक्त हो जाए। कोई जिसको बुखार चढ़ा हुआ हो और उसको कोई कहे कि रसगुल्ला खा लो, तो रसगुल्ला उसे पसंद आएगा क्या? नहीं। एक आदमी का हाथ आग में जल रहा है और दूसरे हाथ में उसे कोई रसगुल्ला दे रहा है, तो क्या करेगा? पहले रसगुल्ला खाएगा या पहले जलता हुआ हाथ हटाएगा? क्या करेगा? पहले तो जो जलता हुआ हाथ है उसे मुक्ति पाना चाहेगा। तो हर मनुष्य आत्मा के अंदर की ये इच्छा है कि पहले हम इस जो दुख दर्दों की दुनिया में हमारा जो दिल जल रहा है, हमारा दिल बहल नहीं रहा है, जल रहा है, दिल को सुख हो रहा है, वो दुखी दिल हमारा उस दुख से छुटकारा पा जाए। जब आग में से हाथ निकल जाएगा अथवा बुखार उतर जाएगा तो अच्छा होने के बाद फिर उसकी इच्छा होगी तो उसे अच्छा अच्छा रसगुल्ला या कोई और चीज खाने को मिले, तो उसको कहते हैं जीवन और साथ शरीर में रहते रहते सुख प्राप्त कर। हर मनुष्य आत्मा की यही इच्छा है कि वो दुख दर्द से छुटकारा पा जाए। जन्म के समय बच्चे को और माँ को जो दुख होता है उस दुख से छुटकारा हो जाए, बुढ़ापे के दुखों से छुटकारा हो जाए, मृत्यु के दुख से छुटकारा हो जाए। मृत्यु भी ऐसा एक भय है जिसे हर प्राणी डरता है। मृत्यु के समय हिंकोड़े आते हैं, दुख तो होता है ना, तो हर मनुष्य आत्मा दुख से छुटकारा चाहती है, मुक्ति चाहती है। ये जन्म जरा और मरण का दुख हमें न दे, हमें तकलीफ न दे, ऐसी स्थिति हमारी आत्मा की बन जाए, ये हुई मुक्ति। और इससे भी ऊँची एक और चीज है, मुक्ति से भी ऊँचा वर्षा एक और है जो परमात्मा बाप से ही मिलता है। तो तीन सौ बात हुई जो गीता का भगवान शिव है वही आकर के देता है उसे, तो ऊंचा वर्षा जीवन मुक्ति। जीवन भी रहे, ये शरीर भी रहे, और शरीर के रहते रहते दुख दर्दों की अनुभूति न हो, सिर्फ सुख की अनुभूति, सुख का अनुभव करें, दुख का अनुभव न करें, और जीवन भी बना रहे, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। तो जो दीवानी बात है, रूहों का बात है, वो ऐसा ज्ञान आकर के सच्ची पर हम बच्चों को देता है कि हमारी दिल इस ज्ञान में ऐसी बहल जाती है कि हमें और किसी सत्संग में जाने की दरकार नहीं रहती, कोई मनुष्य गुरुओं के पास भटकने की दरकार नहीं रहती, कोई भी फूलमाला मेले मनाखड़ों में जाने की दरकार नहीं रहती। हमारा दिल इस ज्ञान में ऐसा रमन कर जाता है कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही स्टेज का अनुभव करने लगते हैं। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो जाती है जीवन में चलते चलते राजयोग सीखते सीखते कि हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव न करते। तो ये वर्षा जो दिल को बहलाने का वर्षा है, वो बाप आकर के दे रहे, ऐसी दिल बहलाने वाला दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। वो एक ही निराकार परमेश्वर है जो इस धरती पर जब आता है तो मीठे मीठे बच्चे कहकर हम बच्चों को बुलाता है। वो हमारे कलयुग के आखिरी जन्म के तामसी टोले को नहीं देखता, तामसी स्वभाव संस्कार को नहीं देखता, वो हमारे शक्ति के आदि रूप को देखता है। जब हम देवता थे उस समय भी भगवान बाप ने 5000 वर्ष पहले आकर के ये गीता ज्ञान दिया था। जब ये गीता ज्ञान दिया था उस समय अर्जुन नर था, उस नर अर्जुन को और द्रौपदी नारी को ऐसा ज्ञान दिया था जिससे वो नर अर्जुन नारायण बन गया और नारी द्रौपदी नारायण बन गई। ये नर से नारायण और नारी से नारायण ही बनाने वाला ये जो ज्ञान है, वो स्वयं परम पिता परमात्मा से ही निराकार दे सकता है। निराकार का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि वो सिर्फ ज्योति बिंदु ही बन करके रहता है, नहीं, वो निराकार को साकार में प्रवेश करता है, हीरो पाठधारी में प्रवेश करके मुकर रूप से पाठ बजाता है। संसार में परमात्मा पाठधारी के रूप में शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सारा संसार उस नारे को लगाने के लिए बाध्य हो जाता है। कौन सा नारा? हर हर बम बम, और साथ में जय मां काली। ये परमात्मा शिव का विशेष पाठ है जो सुपारुष्टम बाद में खुले, कलयुग के अंत में आकर के ये सारा परिवर्तन होता है। और अभी ये परिवर्तन की बेला चल रही है, सूर्य उदय होने वाला है, इसलिए कहते भी हैं, गीत भी बना दिए हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई होने वाला है, तमाशा होने वाला है। ये स्थिति जो संसार की बिगड़नी है, वो संसार में तो बाद में बिगड़ेगी, पहले भारत में वही महामारी महाभारत ग्रह युद्ध सामने खड़ा हुआ है, जिसके लिए गीता ने बोला था, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने अपना मुंह खोल करके दिखाई दिया, देख मेरी ने एटम बम रूपी दाहों के बीच में जो समुद्र और जमीन के अंदर पिरोई हुई है, आसमान के अंदर तैर रही है, उन दाहों के बीच में सारा संसार चबाया जाने वाला है। ये एटमिक धमाकों के रूप में सारा संसार अब नष्ट हो जाएगा। बचेंगे कौन? जो परमात्मा के प्यारे बच्चे होंगे, जिनको परमात्मा बाप आकर के सन्मुख बोलता है। क्या बोलता है? मीठे मीठे कितने मीठे बच्चे, کیسے بچے؟ میٹھے میٹھے کسی دو بچے میں نے بہت سکھ سے ملے ہوئے، جیسے کوئی باپ کا بچہ کسی میلے میں کھو جاتا ہے اور کھونے کے بعد بہت ورثوں کے بعد ملتا ہے، تو بڑے پیار سے دونوں ملتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو 84 جنم لینے والے ہیں پکے دیوتائی آتمائیں، وہ سچی اسی رنگ منچ کی 9 لاکھ آتمائیں ہیں، جاتی نہیں، وہ 9 لاکھ ستارے ہیں جو آسمان میں چمکتے ہیں، وہ 9 لکھا ہار ہے جو گلے کا